दशम स्कंद सत्चालीस अध्याय उद्धव जी रात में नंद बाबा से सारी रात बातचीत करने के बाद में प्रातःकाल सवेरे उद्धव क्यारी में पहुंचे। दूसरों के लिए वो दुर्गम था, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, तो उद्धव जी ने उसमें प्रवेश किया थे। इसका मतलब है भगवान की कोई विशेष कृपा है कृष्ण के लिए। बिना कृष्ण की विशेष कृपा से कोई उस स्थल पर नहीं पहुंच सकता था। कृष्ण की एकांती की इच्छा थी ये उद्धव गोपियों से मिले, इसलिए वहां पर पहुंचे। এদিকে থাকবো, এত এদিকে ছটপট ছটপট, ওদিকে দেখবো ওদিকে দেখবো। তো উদ্ধবজি কো গোপীয় নে দেখা, উসকা প্রসঙ্গ হমনে কল বর্ণন কিয়া। ইস প্রসঙ্গ কো সমঝনে কে লিয়ে কুছ ভূমিকা চাহিয়ে। ভূমিকা মানে ये कहने के लिए भूमिका नहीं, हृदय की भूमिका चाहिए। यदि उस भूमिका में कोई नहीं पहुंचेगा तो कभी भी वो समझ नहीं सकता। इन चीजों को न समझेगा, न उसके समझने से चित्त द्रवित होगा, न भाव आएगा। इसलिए इनको समझने के लिए वैसा ही साधक भजन चाहिए, गोपियों के अनुगत्य में भजन चाहिए, रूप गोस्वामी का भजन करना चाहिए, तब ये समझ में आएगा। कैसे समझ में आए? जब तक कि हम प्रेम की स्थिति में नहीं हो जाते तब तक
इन भावों को समझना बड़ा भारी कठिन है। गोपियां कृष्ण को देख करके अत्यंत विरह में आकुल है। आज तक ऐसा कभी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया।
भाव बंधन, भाव का बंधन यदि हो और ध्वंस के ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी वो भाव बंधन दूर न हो, टूटे नहीं, तो उसको प्रेम कर सकते। जगत में कितने प्रकार के गठबंधन होते हैं, उन गठबंधनों में विवाह बंधन भी एक ऐसा है, क्योंकि विवाह बंधन में तो छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि भाव का बंधन है। इसलिए जूनो माने दोनों, युवक युवती दोनों के जब भाव बंधन हो जाता है, दोनों एक दूसरे से भाव के द्वारा बन जाते हैं, तब उसको प्रेम आदि कर सकते। इन जगत के गठबंधन में स्वार्थ पीछे रहता है, कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। जब तक कि भाव नहीं आएगा तब तक उस प्रेम में, प्रेम माने उस प्रीति में जरूर कुछ डरा रहेगा, कुछ रहेगा। इस तरह से जगत में हम देखते हैं स्त्री पति, पिता पिता पुत्र, भाई भाई, जब तक कुछ धन का कारण नहीं उपस्थित होता तब तक तो बात होता है कि एक भाव में बदले हैं। जमीन कुछ कारण उपस्थित होता है, बस भाव टूट जाता है। कल्पतियों ने उसी प्रेम की बातें बताए, उत्तर से पूछा उत्तर में उत्तर नहीं दे सके। उत्तर से गोपियों ने पूछा अच्छा जो बताओ तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, उनका भी कोई स्वार्थ नहीं था, प्रेम से हम बंधे थे, हमारे प्रेम से कोई लेना देना नहीं था, तो कैसे प्रेम किया। उत्तर उत्तर नहीं दे सके क्यों? प्रश्न तो उन्होंने सुना, उस पर विचार किया, किंतु कोई निश्चित नहीं, सिद्धांत नहीं बना। देखा अच्छा ये गोपियां करें ये प्रेम टूट गया, तो प्रेम टूटना किसको कहते हैं? हम तो देखते हैं दोनों आपस में नहीं मिल रहे, किंतु भाव का बंधन तो देखते हैं कि दृढ़ हो रहा है। तो ये भाव टूटा बंधन गोपियों को कृष्ण ने छोड़ दिया या गोपियों ने कृष्ण को छोड़ दिया? किंतु फिर भी ये गोपियां जा रहे हैं। उत्तर नहीं समझ नहीं सके, उनके प्रश्न को उत्तर नहीं दे सके, उन्होंने उपमा के द्वारा दिखाया। भ्रमर फूलों पर जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है। वैश्यायन के पुरुष का सर्वस्व आकार ले करके और उसे प्रजंती गणी का निष्व निष्व कर माने कुछ नहीं गया आपने छोड़ दिया, और ऐसे उपपति भी त्याग करके और सब कुछ लेकर के उसको भिखारी भिक्षा लेकर के उस धर्म से नहीं लौटे, और अधिक विद्या होने पर विद्या को पढ़ लेने के बाद में शिष्य छात्र फिर गुरु जी के बारे में कुछ नहीं मिल जाता। ऐसे ये सब जो प्रेम है इसमें स्वार्थ है, तो प्रेम वह है जिसमें भाव बंधन हो और कभी भी वो भाव न टूटे, तो उसकी उसका आभास होना चाहिए कहां इस जगत में ही अपने साधन में। गुरु के प्रति वैसा ही यदि रहे, सद्वैष्णव के प्रति वैसा ही भाव बंधन रहे, कोई भी कारण उपस्थित होने पर गुरु के प्रति उसका भाव बंधन का टूटने का खतरा भी हो तो भाव बढ़ जाए। जैसे गुरु जी ने किसी काम के लिए जान दिया, कहा मैं गुरु जी के पास नहीं जाऊंगा, गुरु जी बड़े क्रोधी हैं, मैं घर बार छोड़ करके आया, माता पिता का स्नेह और यहाँ पर डांट रहे हैं, छोड़ करके चला गया। और दत्तात्रेय जैसे 24 गुरु कर दिए, फिर रहा क्या? ऐसा नहीं, गुरु भी वैसा चाहिए, शिष्य भी वैसा चाहिए। जैसे कृष्ण को सुदामा को रात में ठंडा रात में छुटते हुए भेज दिया, वर्षा हो रही है और गट्ठर के कच्चे सिर पर लकड़ियों का, और बेचारी कहाँ जाए, घर में पानी भरा पड़ा है, जंगल में कोचिंग है, कहाँ गड्ढा अधिक है, कहाँ क्या है, कहीं भूल गया, बस लेकर के भेज गए। अर्ण को उपमन्यु ने उनके गुरु ने मेल बांधने के लिए भेज दिया, जब मट्टी से नहीं पूरा हुआ मेल खुद कोई पशु है। यदि गुरु जी को एक मिनट देने देर हो जाती अगले तो वो जम करके बर्फ हो करके मर जाते, अच्छे ही समय पर उन्होंने नहीं कहा गुरु जी ऐसे कठिन काम को देते हैं, कहा सारी विद्याएं प्रेम से भी बहुत ऊंचा चीज है। यदि शीश देने पर भी काट करके प्रेम मिले तो भी सस्ता आ जाए, सस्ता सुन लो इसकी परीक्षा फिर से देखते हैं कि हमारे पास अभी मत आओ, अभी नीचे में भक्ति हो गुरु के साथ, भक्ति कर गुरु के साथ में ऐसा ही संबंध यदि रहे तब वहीं पर देखे उस उसी का आभास है गुरु ने देखा था, शिष्य गुरु का संपर्क, तब वहां जाकर के जब देखेंगे ठीक हो गया तब फिर भाव भक्ति और इसके बाद में प्रेमा भक्ति तब वो मिलेगी, तब ऐसा ये होगा। ये आरंभ होता है श्रद्धा से, बहुत बार बतला चुके हैं, श्रद्धा से आरंभ भी है श्रद्धा, प्राण जाएगा किंतु कृष्ण का भजन नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, प्राण चला जाएगा कभी ऐसे वैष्णव का आश्रम कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वो जो कर रहे हैं उसी को हम बिना किसी विचार के हम मान लेंगे, किंतु कैसे होता है इसको जानने की चेष्टा होगी, तब ये धीरे 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 श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कर दिया, प्रेम भी आगे बढ़ करके स्नेह हुआ। गोपियां जो तड़प रही है प्रेम की स्थिति में नहीं, प्रेम की स्थिति में तड़पा नहीं जाएगा, बिना में आप नहीं होया जाएगा, का प्रेम बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया स्नेह। जब चित्त कृष्ण को देख करके द्रवित हो जाए, ममता अत्यंत अधिक हो जाए, प्रेम से भी अधिक बढ़ कर, और चित्त द्रवित हो जाए कृष्ण को देख कर, तब यह होगा स्नेह, ये स्नेह को भी पार करके ऊपर उठ सकती है, और ये स्नेह भी होता है दो प्रकार का, घृत स्नेह और मधु स्नेह। घृत स्नेह में मिठास नहीं और मधु स्नेह में अपनी मिठास है, चित्त द्रव भी है। कोई एक भक्त रो रहा है कृष्ण की कथाओं को सुन करके, और एक आदमी देख रहा है, वो क्यों नहीं रो रहा, उसमें नहीं चीज है, कथा तो एक ही है, और अपने अंदर में वो स्नेह होने से वो चित्त द्रवित हो रहा है। इसलिए साधन भजन की अपनी संपत्ति होनी चाहिए, अन्यथा इन कथाओं, ये कथाएं तो वही है, कृष्ण भी वही है, उद्धव जी कृष्ण को देख रहे हैं, राधा जी देख रहे हैं, दोनों में तारतम्य है कि एक ही प्रकार का,
कृष्ण को देख करके उद्धव रोएंगे नहीं और गोपियां द्रव में तड़फ रही हैं। जब यही स्नेह जब कुछ दुर्गम स्थिति को लाभ करता है, अब टूटा प्रेम और गढ़ना होता जाएगा, जब कुटिल भाव को ग्रहण करता है, जो ब्रह्मा इत्यादि लोगों के लिए अगम्य, तब ये मान आ जाएगा। जब यही मान, बहुत तरह के मान है, अनंत प्रकार के मान, जब यह अत्यंत घना होगा तो यह राग होगा, प्रणय होगा, और यही प्रणय बढ़ करके राग हो जाएगा, फिर नौनुमाय होने पर यह अनुराग होगा। बहुत बार ये सबकी आलोचना की है मैंने, इसलिए संक्षेप में बतला रहा, ये अनुराग जहां होगा कृष्ण के देखे बिना बेचैन हो जाएगा, उस समय आंखें सर्वत्र सब समय कृष्ण कृष्ण खोजती रहती है, एक पल भी उसके लिए जुग होने लगते हैं अनुराग होने पर। जुगाई तंग निमिषेन चक्षुषा प्राप्तिशायी तुम सुन्नाई म जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। साधारण चीज नहीं कही, उस समय में कृष्ण में सौंदर्य है ये ठीक है, किंतु अनुराग होने पर नए नए रूप में आस्वादन करने की क्षमता उसमें आ जाती है, ये उसकी विशेषता है। वही चीज अनुभूत की भांति सब समय नई नई अनुभूतियों को लाता है। जब यह परिपक्व दशा में आ जाता है और ऐसी स्थिति में आ जाता है, आशय और विषय अपनी अंतिम स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ तक बढ़ना है बढ़ जाते हैं, अब बढ़ने का स्थान नहीं, यावद आश्रय वृत्ति को अवलंबन करते हैं और साथ ही साथ में अपने भावों को दूसरों में संक्रमित करने लगते हैं और जड़ जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बनाने लगते हैं, उनको देख करके ब्रह्मांड रोने लगता है। यावदास्य वृत्ति के द्वारा स्वयं अनुभूत होता है, उस समय में प्रेम ही सर्वस्व, प्रेम ही प्रयोजन, प्रेम ही संबंध, अब प्रेम ही साधन, तीनों एक ही हो जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त उस समय में कोई स्थिति नहीं रहती, तब कृष्ण है मैं हूं ये भाव नहीं होता। नाशो रमणी, नाशो रमण, अब रमण रमणी का भाव नहीं, बस प्रेम रहता है अवशेष। गोपिया इस महाभाव की प्रेम की स्थिति में आई हैं, इसलिए ये सब गोपियों को हो रहा है। हम लोगों में ना आए तब थोड़ा सा कुछ आभास भी रहे साधन का बल, तो कुछ कुछ हम लोग समझ सकते हैं, या लोग होगा जी हम लोगों का भी ऐसा हो। इसलिए प्रेम प्रयोजन बतलाया, कृष्ण प्रयोजन नहीं बतलाया, इसलिए भागवत में बतलाया पहले श्लोक में जन्मादस्य जतः, जतः माने प्रेम, प्रेम से ही आद्य रस की सृष्टि होती है, राधा कृष्ण से नहीं, वो भी एक अर्थ है, राधा कृष्ण से ही वहाँ पर आद्य रस की सृष्टि। यहाँ पर कहते हैं प्रेम ही राधा कृष्ण दोनों को नचाता है और खुद भी नाचता है और बन जाता है क्या, प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्रयोजन, यही प्रेम राधा कृष्ण दोनों को बांधता है, नए नए रूपों में अनुभूति कराता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय प्रेम है, किंतु कौन सा प्रेम, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही प्रेम सर्वाराध्य है। इसलिए उसके लिए कृष्ण के अंदर में लोभ जगा तब महाप्रभु के रूप में आए, इसलिए वो आस्वादन कर सके थे, अन्यथा नहीं करते। अब प्रेम की भी दो, प्रेम के दो पहलू, मिलन और मिलन को संभोग कहते हैं, बिना को भी प्रणम्भ कहते हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का आस्वादन नहीं होगा, यदि दोनों में मिलन कभी हुआ नहीं तो भी प्रलंब भी नहीं होगा, होगा दोनों में मिलन ही नहीं हुआ, प्रेम का आस्वादन नहीं किया तो तड़फेगा किस लिए। इसलिए पहले भी प्रलंब है कि मिलन पहले, ये कोई हमारे आचार्य प्राचार्य लोग ठीक नहीं कर सके, पहले विरह के बाद में मिलन होता है कि मिलन के बाद में विरह। प्रेम की अद्भुत एक ऐसी चीज़ है जिसका निर्णय करना बड़ा भारी कठिन है। साधक अवस्था में तो विरह है ना, प्रेम बच इसमें पूर्व राग में क्या है, विरह। यदि मिलन ही नहीं हुआ उसका कभी, तो फिर वह पूर्व राग कैसे होगा। इसलिए एक बड़ी गंभीर समस्या है, प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए ये प्रेम उन गोपियों में है, इसलिए वो विरह को उतना विप्रलम्ब के रूप में देखती है, उनको इतना विरह होता है। उद्धव जी को कुछ अनुभव है, किंतु वही दास्य भक्ति का विरह तक ही उनको मालूम है। आगे नहीं, इसलिए वहाँ गए तो नतमस्तक हो गए, भ्रमर वहाँ आता है। इसलिए प्रेम को समझना चाहिए, प्रेम तत्व क्या है। जिसको प्रेम नहीं होगा इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकेगा। इसलिए वो बतला रहा था जन्मादर्श जता, प्रेम ही मधुर रस की सृष्टि करता है, आदि रस की सृष्टि करता है। कैसे करता है? दो रूपों में करता है, अन्वय और व्यतिरेक में, अन्वय व्यतिरेक आदि, अर्थात दोनों को मिलाकर और फिर दोनों को भी युक्त करता है। ये प्रेम ही, जो प्रेम ऐसी चीज और दोनों को भी युक्त कर देता है, अलग अलग कर देता है। कैसे? जब कुटिल होता है ना, कुटिल रूप धारण करता है प्रेम, तो दोनों को अलग कर देता है। प्रेम है भीतर, ऐसा कुटिल बन गया कि न तो वो बोलते हैं या न वो बोलते हैं, दोनों पास में बैठे हैं, उन्होंने मुख ऐसा कर दिया, उन्होंने मुख ऐसा कर दिया, मिलन नहीं। अब जैसा जिस कोटि का मान होगा उसी प्रकार से उनका फिर मिलन भी होगा, यही प्रेम। इसलिए और कैसा है स्वराट, स्वराट माने क्या? जब इच्छा करेगा तो किसी के हृदय में आएगा, नहीं इच्छा होगी तो कृष्ण के समान बिना प्रेम की कृपा के ये अपने आप नहीं आएगा। करे वो है ना, न मात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया पौना सुतेन जमेव एष विणुते। जब यह प्रेम हमको वर्ण करेगा जी हाँ हाँ, अब प्रेम हमको इसके हृदय में जाना है, तब वो आएगा। इसलिए बतलाया कृष्ण की कृपा से नहीं, भक्तों के कृपा से नहीं। क्यों बताया ना? भक्ति कैसे होती है? वो हेतु कारण से होता है। भक्ति कैसी है? भक्ति की कृपा से ही भक्ति, भक्ति से ही भक्ति होती है, भक्ति से भक्ति होती है। तो यदि कहो जी कृष्ण कृपा से भक्ति होती है तो ये ठीक नहीं है। क्यों? एक पर उन्होंने कृपा करके भक्ति दिया, दूसरों को कौन दिया, उन पर आक्षेप आएगा। ये पक्षपात युक्त है कृष्ण, इसलिए ऐसा नहीं होगा। यदि कोई भक्त है और किसी पर कृपा करके भक्ति दिया तो यही प्रश्न आएगा, क्यों उसको दिया, वो हमको क्यों नहीं दिया? इतने आदमी बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं और इनको प्रेम दे दिया और किसी को नहीं दिया, क्यों? इसलिए वहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा। तब उसमें से लिया मध्यम अधिकार के भक्तों को, मध्यम अधिकारी भक्तों को लिया, जिसे उनका चार कर्तव्य है, प्रेम भगवान के प्रति, ईश्वरीय प्रेम, और वैष्णव के प्रति मैत्री, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, चार उनके गुण हैं। सब पर कृपा कर सकते हैं, भाई इसको भक्ति नहीं है भक्ति दे। उत्तम भागवत देखा है, ये सभी में भक्ति है तो किसको दें? नहीं, वो देखते कि सभी सेवा कर रहे हैं, वो नहीं देंगे। उत्तम अधिकारी महाभागवत, कनिष्ठ बेवकूफ आदमी कुछ समझता नहीं है, अभिसाधन वजह नहीं, वो क्या देगा? वो भी नहीं देगा। वो भक्तों की अपेक्षा शिव विग्रह पर अधिक केंद्रित होता है, बस यही ठाकुर जी हैं, इन्हीं को खिलाना पिलाना स्नान करना, वैष्णव की सेवा और वैष्णव के मुख से हरि कथा का महत्व नहीं समझता है। अभी विचार करने की क्षमता नहीं आई, इसलिए उसकी भी से नहीं होगा। बीच का रहा मध्यम, ये सब विचार करते हैं, इनके संग से होगा। ये देते हैं नहीं, ये भी नहीं देते, तब उसका क्या होगा? भक्ति संजात्या भक्ति, भक्ति से ही भक्ति होती है। यदि भक्त की कृपा से हुआ तो गड़बड़ हो गया। कहे नहीं, ये भक्ति यदि कृष्ण में है, कृष्ण में ही तो है, इसलिए भक्ति के द्वारा कृष्ण किसी को कृपा करते हैं, इसलिए ये भक्ति के द्वारा हुआ, इसलिए कृष्ण का देना भी अनुचित नहीं, क्योंकि वो भक्ति से के द्वारा होता है। क्योंकि भक्ति तो हल्लादिनी और संबित की मिलित सार वृत्ति है, और कृष्ण में है, इसलिए वो उनमें की जो भक्ति होती है वही कृष्ण को द्रवित करा करके और अपने को दिला देती है, इसलिए दोष नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण की हैति की कृपा से भी ऐसा होगा। आया समझ में? भक्ति के वजह से कृष्ण उनमें है, कृष्ण में है भक्ति, वो भक्ति करा लेती है कृष्ण के माध्यम से। मालूम हुआ जो कृष्ण ने किया है। वैसे भक्त में, मध्यम भक्त में भक्ति है, भक्ति क्या करती है उनका चित्त द्रवित कर देती है, परम करुणामय बना देती है उनके हृदय को, सुकोमल बना देती है, उनके चित्त को द्रवित कर देती है और साथ साथ कहती है इस पर कृपा करना है। ये कौन, किसने कहा? भक्ति ने। अच्छा, यही भक्ति क्या चीज है? प्रेम, प्रेम ही का भाव है। वही प्रेम भक्ति के रूप में मध्यम अधिकारी में से वो कृपा करा देता है। इसलिए ये सब क्या हुआ, अंत में यही आया जो प्रेम ही सार चीज है। यही प्रेम तेने ब्रह्म हरिदा जाद कवे, आद कवि सुखदेव गोस्वामी में यही प्रेम ने उनके अंदर में प्रवेश किया। अब प्रेम तत्व क्या है ये बतलाया, तेने ब्रह्मरिदा जा आद कवे, आद कवि सुखदेव गोस्वामी जी उनके हृदय में इस प्रेम ने प्रकाशित किया, तब वो राधा कृष्ण की जुगल गीत को उन्होंने ये सब लीलाओं को बात पढ़ने मुयंत जत सूरय। इस प्रेम, ये ऐसा दुर्बोध है, सूरय ब्रह्मा इत्यादि ये सूरी लोग हैं, बड़े बड़े नारद प्रभृति हैं, उद्धव जैसे भक्त लोग हैं, मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर मोहित कहने का माने मूर्छित हो जाते हैं, उनके भावों को जब देखते हैं, देख करके और एकदम मूर्छित हो जाते हैं, उनकी प्रलय दशा हो जाती है। ये प्रेम ऐसा है कि जड़ को चेतन, चेतन को जड़, पानी को स्थल और स्थल को द्रवित करा करके पेड़ों को द्रवित करा देता है, नदियों को स्थिर कर देता है जो चलने वाली, तरल को घनीभूत करके बर्फ बना दिया और बर्फ को पिघला दिया, तेजो बार मृदाम। इसी को देखो, गोपियां चेतन और ये प्रेम उनमें प्रकट हो करके कृष्ण को अंतर ध्यान करा करके और गोपियों को मोहित करा करके वो सब लीला अनुभव करती 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 मूर्छित होकर के जेल में गिर पड़ी। ये प्रेम सब कराता है, प्रेम अपने नाचता है, जिसके हृदय में प्रवेश करता है उनको भी नचाता है, सबको ये प्रेम नचा रहा है, विशेष करके मधुर रस के। ऐसे प्रेम की महिमा क्या कहा जाए। आज युद्ध में थोड़ा सा प्रेम आभास के रूप में उदित हुआ है और गोपियों के प्रेम को समझने लायक थोड़ी सी अभी वृत्ति समझना आया नहीं, आया तो तब फिर वही हो जाते, इसलिए ये बतला रहे हैं कैसी स्थिति होती है। कृष्ण ने गोपियों के माध्यम से एक झलक सी उनके अंदर में दी, ये झलक थी। उद्धव जी बहुत दूर बैठे हुए हैं, कानों को एकदम खड़ा करके सुन रहे हैं, मानो अमृत का प्याला उनके कानों में ढाल रहा है और उसको सुन रहे हैं। काश्चित मधुकर्म दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। अब वही प्रेम जो बतला रहा था उसकी मूर्ति है कौन, श्रीमती राधिका, महाभाव की मूर्ति ये श्रीमती, और कोई नहीं है, ये प्रेम ही है, साधारण प्रेम भी नहीं, तरफ प्रेम नहीं, प्रेम के ही समस्त उनके अंग हैं। इसलिए प्रेम की मूर्ति है, इसलिए इनकी ये दशा है। ऐसी कोई गोपी माने राधिका मधुकरम दृष्टा, मधुर एक मधुकर को देखा, ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, ध्यान कर रही है, मानो कृष्ण आ गए, मिलन हो रहा है। मिलन होते 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 दोनों में इनको कुछ मान हो गया, दूर ब्रज से दूर नहीं गए हैं, ये नहीं सोच रही है प्रवास में चले गए, कृष्ण कहीं दूर चले गए हैं ऐसा नहीं। मथुरा और वृंदावन की दूरी कितनी है? मधुबन एक है, एक वृंदावन है, दोनों पास ही पास, मधुबन और वृंदावन इस रूप में देख रही है, उनका संग अध्ययन कर रही है, मान करके मान किया है। और कृष्ण कहीं थोड़े पक्षी पे हुए हैं मानो, उन्होंने अपना दूत भेजा है। प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयी त्वा इदम अब्रवीत, भौरे को भन भन करके उड़ रहा है, उनके चरणों के समीप आकर कमल समझकर उसके मधु का आहरण करने के लिए कमल पर बैठना जाता है। और वो जो प्रेम की पुतली हैं श्रीमती राधिका जी, कहे अरे ये दूत उसका आया है संधि कराने के लिए, मान छोड़ दो और अपने प्रियतम से मिलो, तुम्हारे लिए ये खड़े हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस समय की स्थिति का ये वर्णन कर रहे, मधुपकितव बंधो माष्पी संघ्री सपत्ना कुछ बिललित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपति तन्माननीनं प्रसादम जदु सदस्य विडम्बम जस्य दूतस्तमिद्रे। उद्धव जी सुन रहे हैं और श्रीमती राधिका जी बोल रही, बोल नहीं रही, क्या कर रही? प्रलाप कर रही, जल्प। जल्पना माने क्या? प्रजल्प, प्रजल्प मत करो। प्रजल्प किसको कहते हैं? बेकार की बातें जो होती हैं उसको कहते हैं जल्प, बिना सिर और पैर की बातें इनको कहते हैं प्रजल्प, आगे पीछे से कोई संबंध नहीं है उसको कहते हैं प्रजल्प। जल्प के भी 10 भेद हैं, प्रजल्प सुजल्प अभिजल्प इत्यादि बहुत से, अधिजल्प ये सब बतलाएंगे। गोस्वामी के इन सूक्ष्म भावों को कोई नहीं यदि अध्ययन करेगा, नहीं समझेगा, तो क्या कोटि जन्म में वे सब समझेगा थोड़ा भी? इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अनुग्रह करके उनके प्रजल्पों को, जिसे जगत तीनों पवित्र हो जाते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणुम अभिक्षण जासां हरि कोथोद गीत पुनात भुवनत्र, तीनों भुवनों को पवित्र कर देता है। तो उद्धव जी उनके समीप पहुंचे हैं, दूर खड़े हैं, भ्रमर आकर के भन भन कर रहा है। वो अपने स्वभाव से ही आया है, न उसको कोई भेजा न कोई कुछ किया, उसका स्वभाव है। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अनुग्रह करके जीवों को बतला रहे हैं हम लोगों को, या उस दूत को, उस भ्रमर को साधारण मत समझो जो राधा जी के चरणों में आएगा। और राधा जी इसको देख करके इतनी जल्पना कल्पना करेंगी, प्रजल्प इत्यादि करेंगी, वो साधारण वो भ्रमर नहीं, वो तो सचमुच में आज श्याम श्याम रंग में और यहाँ पर उपस्थित है भ्रमर के रूप में। इसलिए वही भन भन कर रहे हैं और उनको दूत समझ करके इदम अब्रवीत उन्होंने बोलना आरंभ किया, मधु कितव बंधो। साधारण पहले अर्थ बतला करके तब फिर उसकी व्याख्या करें। मधु, मधु माने होता है मधुपान करने वाला भौरा। कितव बंधो, कितव बंधो, कितव माने धूर्त। धूर्त किसको कहते हैं? धूर्त माने ठग को, ठगने वाला धूर्त होता है। ठग कैसा? देखो यदि 100 रुपये का नोट दो तो मैं तुमको 10 बना करके दे दूंगा। अभी सुन रहे हैं जब पेपरों में ऐसे आते हैं, तो आपने दे दिया 100 रुपये का नोट, तो उसने 100 रुपया का सचमुच एक दूसरा बिना बना मैंने उसके पास में था नया सा कड़कड़ी नोट दे दिया। या बा एक तो आ गया, तो उसने कहा चाहे भाई 10 नोट हम दे रहे हैं, तो ठीक है दे दो। तो 10 नोट दिया, एक एक का 10-10 नोट देगा, बस नकली पहले से बंद करके तैयार था, नकली दे दिया, असली पूरा ले लिया, चलता बना। इसको कहते हैं ठग, धूर्त इसको कहते हैं। कितव ठगने को कहते हैं कितव, धूर्तस्य इसलिए कितव बंधो, कितव हुए कृष्ण धूर्त और उसका बंधु हुआ ये कृष्ण। जरा बड़े रूपरेखा में है ना, 3.5 हाथ के, और भ्रमर कितना है छोटा सा। कितव बंधो, अच्छी बहुत बात, बहुत दिनों के बाद में आपका दर्शन हुआ। धूर्त के साथ में बातचीत कैसी होती है, यदि धूर्तता पूर्वक ना हो ना, सीधी सीधी हो तो बात ठीक नहीं होगी। इसलिए धूर्त के साथ में धूर्तता की बात, तो राधा जी भी कम धूर्त नहीं है। करिए मैं तुमको पहचान रहा हूं, तुम्हारी धूर्तता हमसे दूर नहीं रहेगी। मधु हे भ्रमर सपत्न कुछ भी ललित माला कंकुम स्मश्रुभि, सपत्न कुछ भी ललित माला कुंकुम स्मश्रुभि। अरे तुम्हारे अपने मोछों पर गुल्फों में ये क्या लेकर के आया, वो तो कुछ बोल नहीं रहा, केवल बन बन करता हुआ बैठने की चेष्टा में है, साधारण उसका स्वाभाविक भाव। और ये पूछ रही है, जब पूछने पर उत्तर नहीं देता, अच्छा मैं बतला दूँ क्या चीज, तब वो बतला। सपत्न सपत्नी के पस्ताक्षल से लिप्त माला और उसमें लगी हुई कुमकुम अपने गुल्फों में ढो करके ले आ रहा है, बहन करके ला रहा है, मनाने का यही तरीका है। क्रोध हमें नहीं होगा ये जानते हुए भी, पिललित मैंने क्या, पिललित माता है मर्दन, एकदम पीस गई है माला। कैसे पीस गई, दो चीजों का दबाव नहीं होने से वो पीसेगी नहीं। अर्थात तू किसी से मिले हैं कृष्ण, और कृष्ण के गले में वैजयंती माला, उसमें लग गया कुमकुम और उस पर भाव रातू बैठ करके आ रहा है ये भाव। न अस्माकम अंग्री, देखो हमारे चरणों को मत छुओ, मांस पिसांग्री मेरे चरणों को मत छुओ अपवित्र, मैं अभी स्नान करके पवित्र होकर के बैठी हूँ, आ तू मधुपान करके, शराब पीने वाला कैसा शराबी होता है, अपवित्र होता है, क्यों अपवित्र होता है, एक तो वो शराब ही अपवित्र है, सड़ी गली चीज है, गुड़ से बनता है ने? और किसी चीज को सड़ा करके, अन्न को सड़ा करके, ऐसे सड़ी गली चीजें जिसमें मद आ जाता है उसको मदिरा कहते हैं, इसलिए तू अपवित्र है, मच्छु मांग मांग है, नमस्कार करता है, नमस्कार के बहाने हमारा पैर छूता है मच्छु, इसे क्या होगा, तुम्हारी अपवित्रता हमारे अंदर में आ जाए। बहुत से संत लोग पैर नहीं छूने देते, इसीलिए अपनी कुभावनाओं को उनके चरण छू करके उसमें लगा देते हैं, उनकी भावनाओं को ले देते हैं। इसलिए कोई ऐसा अभिसंपात कर जाओ, यदि पैर छुआ तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, नहीं छूने देते। कुछ कुछ ऐसा कर देते, कोई बीच में कोई चीज रख देते हैं जिसे वहीं से प्रणाम करके उधर चारों तरफ से, एक तरफ में दीवार और तीन तरफ से कोई चीज घरौंदा बना करके रख दिया, डिस्टेंस कुछ दूर रखने के। अने तो कोई कोई ढेला लेकर के बैठती है, साले
यदि निकट आया। ऐसे भी अखर साधु लोग हैं,
इसलिए ना नमस्कार मत करो, दूर हटो, अपवित्र होकर। मधुपति, मधुपति माने मधु का पालन करने वाला कृष्ण मधुपति, तन मानी नाग तासांग मानी नाम है, कृष्ण से जो उन्होंने मान किया है उन माननीयों का प्रसादम बहुत हुई, उनकी कृपा, जिस पर उनकी कृपा हुई है अपना संग दान किया है, जो बड़ी आज प्रसन्न है, जिनका मान आज टूट गया बड़ी प्रसन्न होंगी। एक के पेश में जाओ फिर दूसरी मान के रही, उसको कृष्ण प्रसन्न करेंगे, उसके पास जाओ 16,000 से भी अधिक है, जाओ वही, हमारे पास में क्या है, एक कौड़ी छदाम नहीं, पथ की भिखारणी है, निस्व है, अकिंचन बनी हुई, घर बार बेकार का हमारा सब घर बार सब बर्बाद कर दिया, इसलिए उनके पास में जाओ। राज महल में बैठी होंगी और कृष्ण अपनी सारी संपत्ति उनको दे दी होगी और प्रसन्न थोड़ी सी स्तुति करेगी, प्रसन्न होकर के तुम्हें सर्वस्व दे देंगे, प्रसादम बहुत किम अस्मत प्रसाद देने तस्य, अरे हमारे यहाँ तुमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हम तो निस्व हैं। जदु सदसी, किंतु एक बात याद रखो, अरे मूर्ख कर, अरे मूर्ख ज्ञान नहीं है जे कहाँ पर कैसे जाया जाता है, हमको यदि मान कृष्ण के प्रति है तो हमारा मान बढ़ाने के लिए तू घी आग में दे रहा है, ये लाल रंग कहाँ से लेकर के हमारे पास में आया, धोकर के आता ना, जमुना पास में थी, धो लेता धोकर के आता, इस अवस्था में क्यों आया, हम नहीं समझेंगे ये तू कहाँ से आ रहा है, मन नहीं हमारा होगा, क्रोध नहीं होगा। तो जदु सदस्य विडम्बम जस दूत तत्मित्र, जस अब दूत ही ऐसा है, ज्ञान नहीं है मर्यादा का, तू हमारे पास में आ गया, हम स्त्रियां हैं कुछ शब्दों से तुमको ऐसा कह रहे हैं, किंतु जदुओं की सभा में क्या हो, सभी तलवार गदा फरसे सब लेकर के बैठते हैं और वो पुरुष लोग हैं, यदि कुछ इधर उधर देखेंगे तो क्या करेंगे, उठाया और तलवार चला देंगे। तो जिसका दूत ऐसा है तो वो कैसा होगा, ए मैन इज नोन बाय हिज सोसाइटी, एक आदमी चोर है डकैत है बदमाश है अच्छा है, कैसे पता चले, जिस व्यक्ति का वो संग करता है उसे समझा जा सकता है जो कैसा व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है तो उसका साथी कैसा होगा, साधु होगा, ठग का जो साथी होगा कैसा होगा, ठग होगा, सुनार का साथी कैसा होगा, सुनार जैसा ही ठग होगा, अपनी मैया का भी, मैया ने कहा जी बेटा हमारे लिए एक कुछ बना देना, तो एक कान का एक कुंडल बना दे, कहा दे दो मैया, मैया से ले लिया, चार आना काट लेगा और 12 आना का बना कर, या 12 आना काट करके 4 आना दे कर, ठग होगा वो जरूर। तो हम देख रहे हैं कि तुम ये ठग है, तो तुम्हारे प्रभु के यहाँ से आया है तो वो कितने बड़े ठग होंगे, किंतु ठग होने से भी देखो तुम्हारी जैसे यहाँ पर कपटता हम लोगों ने चीन ली पहचान ली, जदुओं की सभा में बैठेंगे जहाँ से ये कुमकुम लेकर के आया और वही कुमकुम अपनी माला लेकर के जदुओं की सभा में बैठेंगे, जदु देखेंगे अरे कहाँ, अभी तो शादी हुई नहीं, कहाँ से आया, देखें जैसे हमारी पत्नियाँ कहीं से झांक करके इसको देख रही थी, अरे हमारी स्त्री पर तो मिलता है तो अच्छा तलवार खींचा, झगड़ा होने विवाद होने की संभावना हो जाएगी, तो हम समझ रहे हैं कि वो कैसे होंगे, ये तो हुआ संक्षेप अर्थ। अब इसका जो भाव है बहुत गहरा है, अंग्रेजी में मैं नहीं बतला, आई एम नॉट टेलिंग इन इंग्लिश बिकॉज माई मूड विल बी समवॉट अपसेट, सो प्रभु व्हाट नेम, रामचंद्र और प्रेम नवीन प्रभु और एनी मन हु नोज इंग्लिश कैन ट्रांसलेट इट, और ओला जाती बहुत है। जदु सदसी विडम्बम,
तो जदु लोग उनका उपहास करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अब बतला रहे वो लिख रहे हैं, कभी कोई गोपी भाव में विभोर होकर के प्रेम के द्वारा चित्त जिसका आक्रांत है, ऐसी परम प्रेमी महाभाव दीप्ता अनुराग वाली गोपी जो समस्त गोपियों में श्रेष्ठ है, वो सो रही है बिस्तरे पर और उस समय में भन भन करता हुआ कोई कमल के सौरभ से आकृष्ट होकर के कोई भौंरा वहां पर आया। कमल में अधिक सौरभ है ना राधा जी के चरणों में और हाथों में, हस्त कमल और चरण कमल में किसमें सौरभ अधिक है? मीठा सौरभ, सुंदर सुगंध, और सच में जैसे कमल में माधुर्य होता है और अमृत होता है, वो क्या होता है? पराग। उसमें जो मधु होती है राधा जी के चरणों में, उसे कोटि गुण सुशीतल सुसौरभ सौरभ युक्त और मिठास युक्त उसमें मधु है, इसलिए भौरा ललच करके उसी के चार तरफ में बन बन करता हुआ मंडरा रहा है। उसको देखा, कौन देखा? दिव्य उन्मादवती वृषभानुनंदिनी प्रजल प्रजति, दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद अभी बतलाया मैं, प्रेम के वजह से ये हो रहा है। प्रेम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया